नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रत्ना पांडे। मुख्य समाचार। स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट में नववर्ष की पार्टी में आग से कई लोगों की मृत्यु, 100 से अधिक घायल। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के तहत आज से भारत के सभी निर्यात को ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में शुल्क मुक्त पहुंच। खेरसौन क्षेत्र में यूक्रेनी ड्रोन हमले में 24 लोग मारे गए। भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों और कैदियों की सूचियों का आदान प्रदान किया और बुल्गारिया ने यूरो को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाया। और अब समाचार विस्तार से। स्विट्जरलैंड में नए साल की पूर्व संध्या पर क्रैंस मोंटाना स्की रिजॉर्ट के बार में हुए धमाके और आग लगने से कई लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 100 से अधिक घायल हैं। पुलिस ने बताया कि गंभीर रूप से घायलों को सियोन और दूसरे शहरों के अस्पतालों में ले जाया गया। धमाके के बाद बचाव दल, हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंच गए। अधिकारियों ने बताया कि धमाके के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है, लेकिन किसी हमले की संभावना से इनकार किया है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई पार्मेलिन ने अपना नए साल का संबोधन रद्द कर दिया तथा पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के तहत आज से भारत के सभी निर्यात को ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। इससे रत्न और आभूषण, कपड़ा, चमड़ा, फुटवियर, फर्नीचर, खाद्य उत्पाद, अभियांत्रिकी सामान, चिकित्सा उपकरण और वाहन जैसे प्रमुख सेक्टर को लाभ होगा। बदले में भारत ऑस्ट्रेलिया के 70% उत्पादों को प्राथमिकता के आधार पर शुल्क मुक्त पहुंच देगा। ऑस्ट्रेलिया से आने वाले सामानों में कच्चा माल तथा कोयला, खनिज अयस्क और शराब जैसे उत्पाद शामिल होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 29 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते की तीसरी वर्षगांठ पर यह घोषणा की थी। इस फैसले से भारत के निर्यात और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। रूस के नियंत्रण वाले खेरसौन क्षेत्र में नववर्ष की रात्रि में 3 यूक्रेनी ड्रोन से एक कैफे और एक होटल पर हमला किया गया। इस हमले में 24 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा घायल हो गए। खेरसौन के गवर्नर वोलोदिमिर साल्दो ने बताया कि ड्रोन हमला उस जगह किया गया जहां नागरिक नए साल का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रूसी वायु रक्षा प्रणालियों ने कई क्षेत्रों में 168 यूक्रेनी ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया। ड्रोन हमलों के खतरे के कारण दक्षिणी और मध्य रूस के कई हवाई अड्डे घंटों तक बंद रहे। भारत और पाकिस्तान ने आज परमाणु प्रतिष्ठानों और हिरासत में मौजूद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूचियां साझा की। ये सूची नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से साझा की गई। एक रिपोर्ट।
विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि समझौते के अनुसार दोनों देश प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को एक दूसरे को परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की जानकारी देते हैं। इस समझौते पर 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर किए गए थे और ये 27 जनवरी 1991 से लागू हुआ था। दोनों देशों के बीच इस प्रकार की सूचियों का ये लगातार 35वां आदान प्रदान है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 391 नागरिक कैदियों और 33 मछुआरों की सूचियां साझा की हैं। ये पाकिस्तानी हैं या इनके पाकिस्तानी होने का संदेह है। वहीं पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 58 नागरिक कैदियों और 199 मछुआरों की सूचियां साझा की हैं, जो भारतीय हैं या जिनके भारतीय होने का संदेह है। मंत्रालय ने बताया कि सरकार के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप 2014 से अब तक पाकिस्तान से 2661 भारतीय मछुआरों और 71 भारतीय नागरिक कैदियों को वापस लाया गया है। इसमें 2023 से अब तक पाकिस्तान से वापस लाए गए 500 भारतीय मछुआरे और 13 भारतीय नागरिक कैदी भी शामिल हैं। विश्व दर्पण के साथ समाचार कक्ष से मोहम्मद जुबैर।
ईरान में पिछले चार दिन से जारी विरोध प्रदर्शन में कल रात सुरक्षा बल का एक सदस्य मारा गया। अमरीकी डॉलर के मुकाबले ईरानी मुद्रा के मूल्य में रिकॉर्ड गिरावट आने के बाद पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरानी मीडिया ने आज खबर दी कि मारा गया व्यक्ति ईरान में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की एक शाखा बसीज मिलिशिया का सदस्य था। स्थानीय मीडिया ने क्षेत्रीय अधिकारियों के हवाले से बताया कि घटना पश्चिमी डोरिस्तान सूबे के कोदश्त में हुई। इस झड़प में सुरक्षा बलों के कई सदस्य घायल भी हुए। आज दक्षिणी फार्स सूबे और पश्चिमी हमादान सूबे से भी झड़प और हिंसा की खबर मिली है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। बुल्गारिया ने नए वर्ष के पहले दिन यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया है और यूरो जोन का 21वां सदस्य बन गया है। सुचारू बदलाव सुनिश्चित करने के लिए बुल्गारिया की मुद्रा लेव जनवरी माह तक यूरो के साथ प्रचलन में रहेगी और 1 फरवरी से यूरो देश की अकेली कानूनी मुद्रा बन जाएगी। वर्ष 2007 में यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद से यूरो जोन में शामिल होना बुल्गारिया सरकार की प्राथमिकता थी। पहली जनवरी 1999 को आधिकारिक से यूरो जारी होने के बाद से 11 देशों में यूरो जोन स्थापित हुआ था। वर्तमान में इस जोन में 27 सदस्य हैं। इनमें से 6 सदस्य स्वीडन, पोलैंड, चेक गणराज्य, हंगरी, रोमानिया और डेनमार्क ने अब तक यूरो नहीं अपनाया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और आवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर भ्रष्टाचार, झूठ और निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए देश को अंधकार में धकेलने का आरोप लगाया है। आवामी लीग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेख हसीना ने नव वर्ष संदेश में कहा कि बांग्लादेश को बर्बाद करने की साजिश रचने वाले लोग अब बेनकाब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश वैश्विक स्तर पर भय का प्रतीक बन गया है। आज कोई भी देश बांग्लादेश और उसके लोगों को सम्मान की नजर से नहीं देखता। उन्होंने कहा कि विदेशी निवेशकों और दानदाताओं के बीच व्याप्त असुरक्षा और अराजक परिस्थितियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश की विशिष्ट पहचान और पाकिस्तान के विरुद्ध 1971 के मुक्त युद्ध की विरासत आज सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने वैश्विक मंच पर देश को सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए अथक प्रयास किए थे। श्रीमती हसीना ने कहा कि देश में संकट के समय में लोगों ने धर्म, रंग, भाषा और जातीयता के मतभेदों को दरकिनार कर एकता के साथ उसका सामना किया है। अमरीका की सेना द्वारा किए गए हमलों में 2 नौकाओं पर सवार 5 लोग मारे गए। इन नौकाओं में कथित तौर पर मादक पदार्थ ले जाने का आरोप था। हालांकि अमरीकी दक्षिणी कमान ने ये नहीं बताया कि ताजा हमले कहां से किए गए। अमरीका द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 जहाजों को निशाना बनाने के एक दिन बाद ये हमला किया गया। ट्रंप प्रशासन ने इन कार्रवाइयों को कथित तस्करों के साथ एक गैर अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष बताया है। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इन हमलों से ऐसे संघर्षों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का उल्लंघन हो सकता है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में कल एक बस और वैन की आमने सामने की टक्कर में 14 यात्री मारे गए और 16 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि 9 यात्रियों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 5 अन्य यात्रियों ने गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में दम तोड़ दिया। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को एक खेल स्पर्धा के लिए लाहौर ले जा रही ये बस झांग जिले में एक वैन से टकरा गई। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता ने कहा है कि पिछले 3 दिनों में तेज बारिश और बर्फबारी के कारण अफगानिस्तान के कई इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई। इसमें 17 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। प्राधिकरण के प्रवक्ता हाफिज मोहम्मद यूसुफ हमाद ने बताया कि खराब मौसम ने देश के मध्य, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में भी जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ ने प्रभावित जिलों में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट में नववर्ष की पार्टी में आग से कई लोगों की मृत्यु, 100 से अधिक घायल। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के तहत आज से भारत के सभी निर्यात को ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में शुल्क मुक्त पहुंच। खेरसौन क्षेत्र में यूक्रेनी ड्रोन हमले में 24 लोग मारे गए। भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों और कैदियों की सूचियों का आदान प्रदान किया और बुल्गारिया ने यूरो को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।